मुख्य समाचारों में मेलबर्न में मास्क नहीं पहनने पर विक्टोरिया के प्रीमियर डेनियल एंड्रूज पर जुर्माना, क्वींसलैंड में स्वास्थ्य प्रतिबंधों में ढील और भारत लखीमपुर खीरी हिंसा में अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई, एससी के सवाल पर आज यूपी सरकार देगी स्टेटस रिपोर्ट। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार अनीता बरार के साथ। विक्टोरिया के प्रीमियर डेनियल एंड्रूज ने मेलबर्न में राज्य की संसद के कार पार्क में बिना मास्क के घूमने के लिए माफी मांगी है। विक्टोरिया पुलिस ने बुधवार और गुरुवार को संसद भवन के बाहर सार्वजनिक स्वास्थ्य आदेशों का पालन करने में विफल रहने के लिए प्रीमियर पर जुर्माना लगाया। जैसा कि विदित है, मेलबर्न में 12 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अनिवार्य कारण से घर से बाहर निकलने के बाद मास्क पहनना चाहिए। विक्टोरिया के कोषाध्यक्ष टिम पलास का कहना है कि मामला पुलिस का है।
Premier's been pretty diligent in terms of his behaviour, and I think there's. I had a brief look at the footage. It looks like he's been approaching a camera for the purposes of doing a piece to camera.
राज्य में आज शुक्रवार को 1838 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना वायरस मामले और 5 मौतें दर्ज की गई हैं। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी प्रोफेसर ब्रेट सटन का कहना है कि वो विश्लेषण करेंगे कि कितने मामलों की जांच चल रही है और उन स्थानीय समुदायों में कितनों का टीकाकरण हुआ है।
7-day average I think is in the 1400s for the last week. So we're not going up at the same rate as we were in the previous weeks. I think that's a good sign. I think we're heading to the peak if today isn't the peak and I don't think it is but I think we're close.
और न्यू साउथ वेल्स के साथ राज्य का बॉर्डर बबल भी आज रात 11:59 से बढ़ा दिया जाएगा, जब मुरुबुल और शेपर्टन का लॉकडाउन समाप्त होने वाला है। न्यू साउथ वेल्स में कोविड-19 के 646 नए स्थानीय मामले दर्ज किए गए और 11 मौतें भी दर्ज की गई हैं। इस सप्ताह 70% के अपने पहले टीकाकरण लक्ष्य तक पहुंचने के बाद राज्य सोमवार से अपने लॉकडाउन प्रतिबंधों में काफ़ी ढील देने की तैयारी कर रहा है। नए प्रीमियर डोमिनिक पैरोटे के राज्य को फिर से खोलने के रोड मैप में कुछ बदलावों की घोषणा के बाद कुछ विशेषज्ञों ने बहुत जल्द खोलने के खिलाफ चेतावनी दी है। दैनिक प्रेस ब्रीफिंग के स्थान पर न्यू साउथ वेल्स हेल्थ के एक लाइव वीडियो संदेश में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कैरी चेंट ने लोगों से सावधान रहने का आग्रह किया।
We are looking forward to opening up on Monday, but it is important that people, as we do it safely. Please remember that it's critical that you continue to wear your masks where they're required, continue to maintain that physical distancing. And most importantly, do not go out and about if you have COVID symptoms. Instead, get tested and isolate and wait until you've got a negative result.
ACT में स्थानीय रूप से अधिग्रहित 40 कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। 21 को ज्ञात कोरोना वायरस मामलों और समूहों से जोड़ा गया है। कम से कम 10 संक्रामक कुछ समय के लिए समुदाय में मौजूद थे। ACT में 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 97% को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक मिली है, जबकि 68% से अधिक को पूरी तरह से टीकाकरण हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री रेचल स्टीफन स्मिथ का कहना है कि मूल निवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर समुदाय पर इस प्रकोप का प्रभाव महत्वपूर्ण है।
Aboriginal and Torres Strait Islander Canberrans are more likely to have underlying health conditions, and so this is a significant concern. And I do particularly want to thank those community controlled organisations who have been working with us, not only to respond to cases and close contacts and ensure that they are well supported, but also to ensure that our vaccination rollout for Aboriginal and Torres Strait Islander people is being as effective as possible.
Queensland सरकार ने आज दोपहर से कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील दी है, जिससे पब, कैफे और क्लब्स में आने वाले लोगों की संख्या दुगनी हो गई है। आज शाम 4 बजे से तीसरे चरण नियम लागू हो गए हैं। इसके अंतर्गत घर पर अधिक आगंतुकों के अलावा रिश्तेदार वृद्ध देखभाल सुविधाओं में जा सकते हैं। प्रीमियर एनेस्थीसिया पैलिसे का कहना है कि स्कूलों सहित इंडोर सेटिंग में मास्क पहनना अभी भी लागू होगा।
But if you're feeling compromised that you can't socially distance, then of course the onus is on you if you want to put that mask on. So these masks are very, very vital in terms of stopping any potential spread.
ऑस्ट्रेलिया में फ्रांस के राजदूत ने इस दावे को बचकाना बताया है कि 90 अरब डॉलर की पनडुब्बी सौदे को रद्द करने के बारे में उनके देश से समय से पहले सलाह नहीं ली जा सकती थी। जीन पियरे तहबोल ने एबीसी रेडियो नेशनल को इस बात की पुष्टि की कि वो दोनों देशों के बीच संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया लौट आएंगे। फ्रांस के साथ ऑस्ट्रेलिया द्वारा परमाणु पनडुब्बी सौदे के अनुबंध को समाप्त करने और अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के साथ नई ऑकस सुरक्षा साझेदारी के फैसले के बाद श्री तहबोल को वापस बुला लिया गया था। पेरिस से बोलते हुए श्री तहबोल कहते हैं कि फ्रांस से झूठ बोला गया था और ये देखा जाना बाकी है कि क्या दोनों देश मित्र बन सकते हैं।
To say that it was impossible to consult France. And if you don't want to take my word, okay, take the words of President Biden, take the words of Secretary of State Blinken. They have officially stated things should have been done differently. They should have been consultations. So if the US is able to recognize that, why not others?
और भारत में NDTV द्वारा मिले समाचार के अनुसार लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लखीमपुर खीरी हिंसा में अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई, सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर आज यूपी सरकार स्टेटस रिपोर्ट देगी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना समेत 3 जजों की खंडपीठ कर रही है। कल गुरुवार को यूपी सरकार ने कोर्ट से कहा था कि मामले की जाँच के लिए SIT का गठन किया गया है, FIR दर्ज की गई है। इस पर कोर्ट ने अगले दिन यानी आज शुक्रवार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। और भारत जम्मू कश्मीर में एक सिख संगठन ने सिख समुदाय से काम पर न जाने की अपील की है। उनका कहना है कि जब तक सुरक्षा सुनिश्चित ना हो तब तक काम पर ना जाया जाए। कल बृहस्पतिवार को कुछ हमलावरों ने स्कूल में घुसकर स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और शिक्षक दीपक चंद की हत्या कर दी। बताया गया है कि सभी शिक्षक एक साथ चाय पी रहे थे जब हमलावरों ने इस गवर्नमेंट हाई स्कूल में घुसकर प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और शिक्षक दीपक चंद की पहचान करके उन्हें अलग किया और काफ़ी करीब से उन पर गोली चला दी। दोनों ने ही उसी समय दम तोड़ दिया। इससे पहले कि पुलिस और सुरक्षा बल वहां पहुंच पाते, वो लोग वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। NDTV से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने इन हत्याओं के पीछे आतंकवादी संगठन लश्करे तैयबा की एक नई शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट का हाथ बताया है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही हमलावरों का पता लगा लिया जाएगा। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के लगभग 73 सेंट और भारत के 54.74 रुपये के बराबर है। खेल समाचारों में सोकरूज ने कतर में ओमान के खिलाफ अपना विश्व कप क्वालिफायर जीता है। एबरमोबिल, मार्टिन बॉयल और मिच ड्यूक के लक्ष्यों ने ऑस्ट्रेलियन टीम को 11वीं सीधी विश्व कप क्वालिफाइंग जीत दिलाई, जिससे वे अपने समूह में शीर्ष पर पहुंच गए। उनका अगला मुकाबला मंगलवार को जापान के खिलाफ है, जो सऊदी अरब से हार गया था। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 7 डिग्री। एडिलेड में बौछारें, अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। मेलबर्न में देर तक बौछारें, अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। होबार्ट में भी एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। कैनबरा में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 4 डिग्री। सिडनी में अधिकतम धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। ब्रिस्बेन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 17 डिग्री। और डार्विन में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।
SBS
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।